ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सकल पदार्थ है जगमाही और भाग्य बिना नरपावत नाही। आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो परमात्मा के इतने कृपा पात्र हो कि आपको वो अनमोल ज्ञान और अनमोल मंत्र परमात्मा की जो यथार्थ भक्ति साधना है वो आपको सहज में प्राप्त हो गई है। परमात्मा की तरफ, परमात्मा के पाने की उमंग में न जाने कितने श्रद्धालु बहुत ही असंख्य जन्मों से प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने परमात्मा पाने के लिए कितनी कठिन साधनाएं की हैं, हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई, और भी बहुत से प्रयत्न उन्होंने किए। जैसा भी उनको किसी नीम हकीम गुरु ने जो भी साधना मंत्र बताया उसका भी बहुत जाप किया, लेकिन जब तक हमें आम का बीज नहीं मिलेगा और आम की महिमा सुनाने वाले बहुत मिल जाएं और वो बीज देते हैं बबूल का, कीकर का, तो कीकर बीज का और उसकी कितनी सेवा श्रद्धा से करो, आम नहीं लगेंगे, किक्कर के बीज के कांटे ही प्राप्त होंगे। और आम बीज करके फिर उसी तरह लगन से, उसी श्रद्धा से आप उसकी सेवा सिमन करोगे, उसकी सिंचाई करोगे, सुरक्षा रखोगे, तो आम के बीज से उत्पन्न पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ के फिर आम ही लगेंगे, तो आपको वो आम का बीज मिल गया, वो यथार्थ भक्ति विधि मंत्र मिल गए। अब आप जी को चाहिए इसको बड़ा संभाल के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जावे। गुणात्माओं, आपको जब इस मंत्र की महिमा का और इसकी कीमत का पता चलेगा, आप इतने सतर्क हो जाओगे जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही समय उपरांत या वैसे भी गर्भ रह जाता है तो फिर उसके प्रति वो कितनी सतर्क होती है। और बड़ी बूढ़ियां भी उसको बताती हैं, बेटा ऐसे ना करना, ऐसी वस्तु ना खाना, ऐसे सावधानी से कदम रखना ताकि तेरा बच्चा खराब ना हो। और वो भी रात्रि के समय भी जब नींद के अंदर होती है कभी करवट बदलती है और एकदम झटके से वो सावधान होती है कहीं मेरे बालक पर दाब ना गिर गई हो और कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि वो उसकी कीमत से वो परिचित है। इसी प्रकार ये भक्ति रूपी आज बीज आपके आत्मा में डला है जिस दिन आपने नाम ले लिया। अब ये भक्ति रूपी गर्भ आपके अंदर प्रारंभ हो गया है, इसको सफल करके इस लाल को पूरा करो और आपका मोक्ष होगा। धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करणी धन कुल धन जहां साधु प्रवेश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे स्वयं, उनको सचखंड सतलोक लेकर गए थे जो अपना मूल स्थान है, जहां सर्व सुख है कोई दुख नहीं, वहां ना वृद्ध अवस्था है ना मृत्यु है, वहां सदा युवा रहते हैं, कोई काम नहीं। वो सुख आपको वहां प्राप्त होगा जिसकी खोज आप इस 21 ब्रह्मांड की काल की जेल में खोद रहे हो। यहां पर प्रत्येक वस्तु का अभाव बना ही रहता है, कोई ना कोई चीज का अभाव यहां बना ही रहता है और वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा उस स्थान पर लेकर गए, वहां से वापस छोड़ा, अपने से परिचित कराया, यथार्थ ज्ञान उनको दिया, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को हमारे लिए कैसे वर्णित किया है। धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करणी धन कुल धन जहां साधु प्रवेश। गरीब संत सुरसरी चलत है मारु देश बहंत बागड़ मंज बिलास हो ऐसे नदी सुरसरी संत। अब क्या बताते हैं कि धन है वो जननी जिसके संत उत्पन्न हुए, भगत उत्पन्न हुए, और धन है वो भूमि जहां पर उनका जन्म हुआ, और धन है वो नगरी जिसमें उस संत भगत का जन्म हुआ, और धन है उन अक्षेत्र के लोगों की शुभ करनी शुभ कर्म, और धन है वो कुल जहां पर संत प्रगट हुए प्रवेश हुए। एक तो वो स्थान धन्य है जहां संत का जन्म हुआ, और वो मां धन्य है जिससे जन्म हुआ, और फिर वो स्थान धन्य है जहां संत पहुंचते हैं अपना सत्संग प्रचार करते हैं, और धन्य है वो भक्त जो उस संत की शरण ग्रहण करते हैं। तो क्या बताते हैं कि जैसे बागड़ देश में, बागड़ देश उसको कहते हैं जहां पर कोई सिंचाई साधन ना हो किसी प्रकार का भी, तो वहां के व्यक्तियों का जो जीवन स्तर होता है वो बहुत ही कमजोर और बड़े निर्धन होते हैं, और उस बागड़ क्षेत्र में यदि नहर पहुंच जाती है तो फिर उनका कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है, कितने सुख उनको होते हैं, बढ़िया फसल होती है, बढ़िया मकान बना लेते हैं, रहन सहन उनका अच्छा हो जाता है और वो सुखी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब तक हमारे अंतःकरण रूपी इस धरती में, इस बागड़ में, हमारी आत्मा के अंदर, अंतःकरण के अंदर जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती तो हम कंगाल होते हैं। और जब संत रूपी सुरश्री यानी दरिया हमारे हृदय रूपी बागड़ में पहुंच जाती है तो फिर वहां सब सुख होने शुरू हो जाते हैं, यानी उस बागड़ में फिर ठाठ हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं भाई, या तो माता भगत जन या दानी या सूर्य, ना तो रैले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। कि या तो माता भगत संत उत्पन्न करे, या कोई दानी यानी अच्छे धर्मात्मा बच्चे हो, या सूरवीर हो। सूरवीर के अंदर एक विशेष गुण होता है, वो किसी को सताता नहीं, और किसी को कोई सता रहा हो तो उसको सताने भी नहीं देता। और इसलिए कहते हैं या तो ऐसा व्यक्ति हो जो ना दुख दे और ना दुख सहन करे, ना आसपास के उसके शरणागत व्यक्तियों को दुखी होने दे, दुष्टों से बचावे, या फिर भगत हो। या तो माता भगत जने या दाता या सूर्य, सूर सूरवीर, दाता माने दानी, ना तो रेले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। अगर ये तीन क्वालिटी के पुत्र उत्पन्न नहीं करती है तो इससे अच्छा बांझ भली, क्यों अपने शरीर का विनाश करती है कुत्रु पाल के। धन जननी धन भूमि धन्य, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां संत परवेश। जहां संत आते हैं, धन्य है वो जननी जिनसे उन भक्तों का जन्म हुआ, जिनके लिए वो संत वहां पहुंच गए उनके घर पे, उनके क्षेत्र में। और धन है वो भूमि, धन है वो देश, पूरा देश। अब देखो इस दास को माता ने जन्म दिया, परमात्मा ने इस दास को अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया, पूरे भारत देश पर कृपा होगी, कहां कहां से पुण्यात्मा परमात्मा के बच्चे आकर लाभ उठा रहे हैं। कहते हैं धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, नगरी धन्य और सारा देश धन्य। अब विदेश वाले तो बहुत बाद में नंबर आओगा, तब तक तो आप ढेर सारे पुण्य कमा चुके होंगे, तो इस नगरी पर इस देश पर कितनी कृपा है। संत सुरसरी चलत है ये मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास हो ऐसे नदी सुरसरी संत। अब परमात्मा कहते हैं साधु संत एक जन साधारण से नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक विशेष परमात्मा की पावर होती है। कहते हैं अकल अलोणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। अपने आत्माओं, जैसे आज संसार के व्यक्ति सिर्फ ये बात जानते हैं कि काम करो, और जो काम नहीं करते और सत्संग वगैरह में जाते हैं दो दो तीन तीन दिन लगा कर आते हैं तो उनको मूर्ख समझते हैं। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया है कि अकल अलूणे दीखते, अकल अलूणे बिना अकल के, यानी मूर्ख नजर आते हैं साधु संत भक्त समाज के लोगों को, उसके विषय में क्या बताया है कि अकल अलूणे दीखते, ये सर्व अकल के मूल और ये सदा रटे हरि नाम को, ये झूले अनहद झूल। समाज को तो भगत कति मूर्ख दिखे और भगत ने समाज मूर्ख दिखे, क्योंकि वो कर क्या रहा है, जिसको ठी बंगले और कार परिवार के लिए वो सारा जीवन नौछावर कर देता है और सारा जोड़ा दाड़ा यहीं रह जाता है, एक मिनट में मृत्यु हो जाती है और अगले जन्म में उसके साथ क्या होगा, पशु पक्षी की योनियां भोगेगा, उन जोनियों में जाएगा। तो भक्तों को वो इसलिए अनजान दिखाई देते हैं समाज के लोग, जगत के व्यक्ति, कि ये तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। और उनको केवल हम बुरे इसलिए अच्छे नहीं लगते, मूर्ख दिखाई देते हैं कि ये कामना करते, धंधा नहीं करते, खाओगे कहां से। तो ये उनकी अपनी सोच है और अध्यात्म मार्ग इसके विपरीत है। आप काम भी करते हो, ऐसा थोड़ा है, काम नहीं करते, लेकिन इस काम के साथ साथ परमात्मा का नाम गणना जरूरी था जो जगत नहीं कर रहा, इसलिए वो अनजान है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं कि अकल अलूणे दीखते, ये सर्व अकल के मूल, ये तो सब जो अकल अलूणे, जिनमें जो दिखाया अकल नहीं है, इनमें मूर्ख है। ये कहते हैं ये न तो सर्व अकल प्राप्त है, ये तो बहुत विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति है जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब फिर परमात्मा बताते हैं कि वो साध जो नकली हैं, भक्ति भी करते हैं, संत हैं, वो नकली गलत साधना करते हैं, गलत मंत्र देते हैं, गुमराह किए बैठे हैं भक्तों को, उनके विषय बता रहे हैं कि जो तुम बाह्य आडंबर करके जनता में एक भगत बने दिखाई देते हो, किसी ने माला पहन रखी है, किसी ने तलक लगा रखे हैं, किसी ने मुंड मंडवा रखा, किसी ने बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा रखी हैं, तो उसके विषय में कहा कि भक्ति करने से बात बनेगी, ये लोग दिखावा करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। कहते कंठी माला सुमरणी, ये सभी सिलसिला मेट, कन फूका गुरुआ मिले जो जम मारी फेंट। कंठी माला सुमरणी, भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का और अंतर राख्या खो। ये कंठी माला टिक्की बिंदी लाक है, अन्य दिखा बड़ा साधु संत भगत होगा, कहते हैं ऊपर ते डूंडा साध का और बड़ा महापुरुष दिखाई देता है, और सत भक्ति है नहीं तो अंदर भक्ति का नाश करे बैठा है। तो क्या बताते हैं, केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही, निस्दिन फेरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। एक समय एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं एक बार हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पहुंच गया और उससे भी आगे एक जंगल में चला गया, बहुत से भक्त और भी व्यक्ति जा रहे थे, मैं भी उनके साथ साथ चला गया कि कहां जा रहे हैं, तो वहां पता चला कि वो बहुत से व्यक्ति पहले ही वहां विराजमान थे और वो कह रहे थे कि यहां जंगल में संत रहता है, तन पर कपड़े नहीं रखता शरीर पर, केले के पत्तों से अपने लंगोट के स्थान पर बांध लेता है और ना नगर किसी शहर में कुछ मांगने आता है और इंसान से भाग जाता है, वो किसी मनुष्य के आसपास नहीं आता। और उसके विषय में ये कहा जा रहा था कि जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता, वो धनी हो जाता है। तो बहुत से व्यक्ति वहां बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे ही यहां बैठा था और वो महात्मा आए और मुझे देखते ही वापस भाग गए जंगल में। मेरा भी ध्यान बाद में पड़ा, जब वो भागते नजर आए, यदि उनके दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो आदमियों से बेद के जाही, और निस दिन फिरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कहते हो तो पशु हैं, आदमियां देख के भाजन डर के, इंसान है वो। डेरे डांडे खुश रहो ये खुसरे लहे ना मोक्ष, धरु पर लाद भाई पार हो गए फिर गृहस्थी में क्या दोष। हमारे को सारा उल्टा पाठ पढ़ा रखा था। परमात्मा बता रहे हैं कि आप ध्रुव और प्रहलाद को तो पार होया मानते हो, वो तो गृहस्थी में थे। बात यह नहीं है कि गृहस्थी ही व्यक्ति पार होगा या जिसने ब्याह नहीं करवा रखा वो पार नहीं होगा। ये भी नहीं परमात्मा कहना चाहते कि खुसरे पार नहीं होंगे इजड़े। अब क्या बताते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो, अपने गृहस्थी में खुश रहो, और खुसरे लहना मोक्ष। यदि आप ये सोचते हो, जैसे कई भक्त कहते हैं कि गुरु तो बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, गुरु तो बाल ब्रह्मचारी और चेला दरबारी तो कैसे पार पड़े, कमाल की बात है। अब जो औषधि गुरु खा रहा है, मान ले उसके पेट में दर्द हो गया, तो गुरु जी जो औषधि खा रहे हैं वो ही चेले भी खाएंगे, अगर वो रोग है तो दोनों उन्हें एक ही औषधि खानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार जो साधना गुरु मान ले ब्रह्मचारी भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष होगा सच्चे भक्ति से। वो चाहे गृहस्थी में रह के कर लो और चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लो। और कहते हैं यदि तुम नो सोचो हो कि ब्रह्मचारी ही मोक्ष प्राप्त करेंगे तो खुसरे इजड़े तो जन्म जात ब्रह्मचारी है वह, फिर वो तो तुम तो पहले पार हो जाते, तुम्हारे गुरु से ही पहले पार होंगे। तो दुराचार बुरा बताया है, मन में दोष और किसी बहन बेटी की तरफ बुरी नजर, ये बहुत पाप का काम है। बाकी अपना कहते हैं डेरे डांडे खुश रहो, जैसा भगवान व्यवस्था कर रखी वैसे रहो और पार हो जाओगे। तो यहां बता रहे हैं कि फिर कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ें अंतर झिनी धूल, जग जाने बंदगी करें ये वो वे सूल बबूल। इब हमने ज्ञान तो था नहीं, हम कोई साधु संत को देख लेते और वो डोंगी थोड़े से ऊंचे स्थान पर बैठा करे, अक्सब ने दिख जाने साधु बैठा है चमटा गड्ढे, तो श्रद्धालु तो भगवान की तलाश में होते ही वहां पहुंच जाते हैं। उन चढ़ावा चढ़ावा मत्था टेक दूध डोंगे लोटे ले जावे। तो परमात्मा इसके विषय में कह रहे हैं कि डंब डंब मन पाखंड करते हैं लोग दिखावा, डंब करें डूंगर चढ़े ऊंचे स्थान पर बैठेंगे और अंतर छीनी झूल, अंदर कुछ है नहीं उसके पास, भक्ति नहीं। और दुनिया ये समझते हैं जग जाने बंदगी करे, दुनिया ने सोचे बड़ा भगत है वो, तब वो है सूल बबूल, क्योंकि साधना ठीक नहीं, अपने कर्म बिगाड़ रहा है, अपना जीवन नाश कर रहा है। अब परमात्मा बताना चाहते हैं कि जब तक आप सत भक्ति नहीं करोगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बिन उपदेश अचंभ है ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कठोर है ये नर ना ही पाषाण। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, कि जो उपदेश लेकर के भक्ति नहीं कर रहे हैं सच्चे गुरु तय, तो कहते मुझे आश्चर्य है कि वो किस आशा को लेकर यहां जी रहे हैं और भक्ति बिना का ठोर है। ये नर मनुष्य नहीं है, वो पत्थर है। ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बड़ा सेठ था, खूब संपन्न था, संतान थी, बड़ा सुखी था और मृत्यु होगी एक सेकंड में एक्सीडेंट के अंदर। अब बता किस आस पर जी रहा था वो बोला व्यक्ति। तो यहां परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है, ये क्यों जीवत है, प्राण किस लिए जी रहे हैं और भक्ति बिना कहां ठोर है, ये पत्थर है, मनुष्य नहीं, नर ना ही पाषाण। अब परमात्मा बताते हैं कि साधना भी कर रहे हो और विश्वास नहीं आपको परमात्मा की भक्ति में, तो वो भक्ति भी व्यर्थ है। एक समय ये दास जब इस नाम से लगा नहीं था तो हम भक्ति तो करते ही थे, क्योंकि पिछले संस्कार गणे अच्छे थे, भक्ति हम करते थे। कैसी करते थे? जैसे श्री राम को भगवान मान लिया, श्री कृष्ण को भगवान मान लिया, विष्णु जी के हम पूरे पुजारी थे, उसके साथ साथ अपने घरेलू साधनाएं बाबा श्याम जी की वो अलग से करते थे। राजस्थान के अंदर साल आसर जाते थे उस पत्थर पर मत्था घिसाने के लिए, तो लगन बहुत थी। अब पता चला कि वो रास्ता ना होने से, ठीक रास्ता ना मिलने से हम लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। तो कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, हमें समझाने के लिए बताना चाहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद का अर्थ होता दंत कथा, सुनी सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, जो यथार्थ ना हो उसको लोक वेद कहते हैं। जैसे लोक वेद था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं सब, इनके कोई माता पिता नहीं, और विष्णु जी की भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, यही सब कार्य करते हैं, यही संसार की उत्पत्ति करते हैं, यही रुद्र रूप धार कर संहार करते हैं, यही ब्रह्मा रूप धार कर जो है उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये पालन करते हैं, सबके यही सृजनहार है। ये थी बकवाद, ये था लोक वेद, ये झूठा ज्ञान। अब इनकी जीवनी से पता चला ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती, ये सर्वेश्वर नहीं है। ये तो सर्वेश्वर होंगे कहां, इनका बाप भी सर्वेश्वर नहीं है, ज्योति निरंजन इनके माता पिता है, माता इनकी दुर्गा है, पिता इनका यु काल ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। तो परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, जैसे ये दास पहले श्री राम श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, विष्णु जी के अंदर एक विशेष आस्था थी, इसके पैरेलल इसके समांतर हनुमान जी का भी खूब श्रद्धा थी। तो बिना ज्ञान के तो हम ऐसे ही हैं, और भी किसी देव की महिमा सुनते थे उस पर भी आसक्त हो जाते थे। तो फिर सतगुरु मिले तो पता चला उन्होंने एक तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, एक लैंप दे दिया, लालटेन दे दी, दीपक। अब हम उसकी रोशनी में भटकेंगे नहीं, सीधे मार्ग चलेंगे। तो पहले ये दास जो लोक वेद के आधार से साधना करता था, तो उस समय जो हमें स्वाभाविक अपने संस्कार के सुख हो रहे थे, जैसे बच्चे को सबसे पहला सुख तो होता है वो पढ़ रहा है पास हो जाए, तो पास होते चले गए, और जो साधना जैसी भी हम करते थे जिनको भगवान मानते थे, ये श्रेय हम उनको दे रहे थे कि भगवान श्री विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी ने बच्चे सोचा करते पास कर दिया। फिर साथ में हनुमान जी की पूजा करते थे, हनुमान जी याद आ गए तो हनुमान जी ने पास कर दिया, फिर श्याम जी याद आ गए श्याम जी ने पास कर दिया, फिर नौकरी लगी। तो यही क्रेडिट देते थे कि भगवान विष्णु, भगवान शिव जी और बाबा हनुमान, इनकी दया होगी। फिर विवाह हो गया, संतान हुई, बेटा बेटी होगी, तो ये भी श्रेय हम इन्हीं को दे रहे थे कि इन्होंने मौज कर दी। अब पता चला तत्वज्ञान की रोशनी से कि ये तो हमारा पूर्व संस्कार पिछले जन्म के जो मस्तिष्क में लिखी हुई थी वही उपलब्ध हो रही थी, और जो साधना हम कर रहे थे वह साधना ही नहीं थी, वह शास्त्र विरुद्ध साधना थी, जिस कारण से उससे कोई सुख होने वाला था ही नहीं। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है, यूजलेस। फिर यह भी साथ में कहा है कि 24वें श्लोक में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी के लोक वेद पर दंत कथा पर आश्रित ना होना, जो सदग्रंथों में लिखा वो फाइनल मानना। जो हमारे सदग्रंथों में से कौन से सदग्रंथ प्रमाणित हैं? प्रथम तो सूक्ष्म वेद है, उस सूक्ष्म वेद को हम समझ नहीं सके क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में था, साधारण भाषा में, परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिया हुआ, कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक, ये परमात्मा का सूक्ष्म वेद है। उसके साथ साथ जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन महापुरुषों का अनुभव की वाणी जो आंखों देखा वो सूक्ष्म वेद का अंश है। ये तो प्रथम है। उसके बाद चारों वेद ये प्रमाणित सदग्रंथ है भक्ति मार्ग के, और फिर श्रीमद् भगवत गीता। अब श्रीमद् भगवत गीता एक निष्कर्ष है चारों वेदों का, वेदों को समझना बड़ा कठिन है, और श्रीमद् भगवत गीता एक सार रूप में दे रखी है इन सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष है। और कोड वर्ड ज्यादा है क्योंकि किसी बहुत बड़े विवरण को और थोड़े में किया जाएगा तो उसमें सांकेतिक शब्द बहुत लिखने पड़ते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता में कोड वर्ड सांकेतिक शब्द बहुत घने हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो साधना वर्णित है और जो फिर उसमें ये कहा है कि ये मैं जो बता रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, या ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में उन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी में, वेद की वाणी तो बोली जा रही है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ किया है खुद सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन जो जरा और मन से छूटने के लिए, जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट से, मरण माने मृत्यु से, इस कष्ट से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, जो साधना करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म से और सब कर्मों से परिचित है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के गीता के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो श्रेष्ठ परमात्मा है। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे कहा है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया कि उसने जो अपने मुख कमल से वाणी बोली है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी है, वो पूर्ण परमात्मा के मुख से बोली गई वाणी है, उसमें विस्तार के साथ कहे गए हैं। तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि पूरी विस्तृत जानकारी भक्ति मार्ग की तो वो उस तत्व ज्ञान में है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख से बोलता है। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान खुद आकर बोलता है, एक लीला करके चले जाते हैं, उसके बाद उससे परिचित कोई तत्वदर्शी संत मिले, उससे जाकर वो तत्व ज्ञान पूछ, उस पूर्ण मोक्ष के मार्ग को मैं नहीं जानता, फिर भी वो अपने सत्र का और सांकेतिक उस परमात्मा का भी वर्णन कर रहा है। आठवें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञान दाता कहता कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, और युद्ध भी कर, 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा, तो डोंट वरी, चिंता मत कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस सचिदानंद गर्भब्रह्म की जो भक्ति करता है, उसकी साधना और मंत्र उस तत्वदर्शी संत से मिलेंगे, वो फिर वो भक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति से उसके पास पहुंच जाता है। अपने विषय में कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मरण तेरे भी रहेंगे, मेरे भी रहेंगे। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, और मेरी उत्पत्ति हुई है, मेरा जन्म हुआ है, मेरे जन्म को कोई नहीं जानते, क्योंकि यहां के जितने भी प्राणी मेरे अंतर्गत हैं वो मुझ से ही जन्मे हैं। फिर ये कहता है मेरी भक्ति करेगा, जन्म मरण तेरा भी रहेगा और मेरा भी रहेगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देता है, ये पहचान है उस संत की कि वो तत्वदर्शी संत है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, ज्योत निरंजन, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और तत्व ज्ञान बोलकर चले जाते हैं, उसके बाद इस दास पर कृपा करी है उस तत्वदर्शी संत बनाने की, और आज इस दास ने वो सभी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के विभाग सार्वजनिक किए हैं। तो ये दास वर्तमान में एक तत्वदर्शी संत है इस विश्व में, और दूसरा है नहीं, ये ब्रह्म ना पड़ता। अब कई कहते हैं कि अपनी बड़ाई करते हैं वो संत नहीं होते, पुण्यात्मा बड़ाई तो होती है बकवाद करना और सच्चाई कहना बड़ाई नहीं होती। जैसे 1000 के नोट पर लिखा हुआ है कि मुझे जो प्राप्त करेगा उसको 1000 रुपये दूंगा, क्या वो बड़ाई कर रहा है? वहां सच्चाई लिखी है, ये 1000 रुपये आपको देगा ही देगा, इसी तरह समझ लेना। तो कहने का भाव ये है कि उसमें कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो सभी विभागों को बता देगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के। फिर कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान ने काट के, अज्ञान को काटकर उसके पश्चात, यानी इस तत्व ज्ञान को ढंग से समझ कर अज्ञान हट जाएगा तेरा, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, केवल उसी की भक्ति कर, अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है। अब प्रसंग ये चल रहा है कि भक्ति भी करते हैं और भक्ति गलत भी करते हैं, शास्त्र विदिता कर मनवाना आचरण भी करते हैं, तो वो भी व्यर्थ है। तो हम उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाणिक हैं। तो प्रमाणित सदग्रंथों में दास आपको बता रहा है कि हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें कौन सा संदेश दे रही है। इसमें ना श्री राम ना श्री कृष्ण और ना विष्णु किसी की महिमा का जिक्र नहीं है, ना उनकी भक्ति का गीता संकेत है। गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण की बॉडी में इनका पिता युगकाल ज्योत निरंजन बोल रहा है, और वो अपनी महिमा और उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा दोनों पैरेलल बता रहा है, अपनी अक्षमता भी बता रहा है, अपनी स्थिति भी बता रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु रहेगी, मेरे उपासक की भी रहेगी। और यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसके विषय में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब अपने विषय में कह रहा है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। तो जहां युद्ध करना है वहां शांति हो सकती है। तो ये कह रहा है कि मेरी शरण में रहेगा तो भाई ये युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा और यहां तो लठम लठा रहना ही पड़ेगा और जन्म मृत्यु भी तेरी होगी होगी, परम शांति नहीं हो सकती। और परम शांति चाहता है तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बता ही दिया। 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के पास जा, मैं नहीं जानता उसकी जानकारी। तो अब परमात्मा ने आपको वो तत्वदर्शी संत सहज में मिला दिया है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो आपको अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं है। ये दास पारखू है, लाल की कीमत जोरी जान सकता है, लाल स्वयं नहीं बताता, उसके ऊपर लिखा नहीं होता। तो ये दास वो जोरी है, आपकी किस्मत से खूब परिचित, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। भले ही आप दुख में यहां आए हो, चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है, धन्य है आपके माता पिता जिनसे चलो। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं कि जो ये ओम नाम का जाप करें और ओम शांति ओम कर शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। ओम से तो शांति हो ही नहीं सकती, लट्ठा बांध सके सिद्ध है। अरे ओम शांति के वाह भाई वाह, आग और पेट्रोल दोनों ले रहे नो के शांति होगी, दूनी आग लगे इससे तो ओम से शांति नहीं हो सकती। ओम के साथ एक तत्व मंत्र और जोड़ा जाता है ताकि इसके अवगुणों को कंट्रोल रखता है वो। अकेले ओम के जाप से लाभ नहीं होगा, वो होगा तो गलत ही होगा। आपको लाभ दिखाई देगा जैसे ऋषि मैं ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया और सिद्धियां आ गई, एक वचन से पता नहीं क्या क्या उद्मस्तार दे, तो उन्हें सोचा कि यू था बहुत कुछ पा लिया हमने ओम के नाम से, वो तो आग लगा दी, ये तो शांति हो ही नहीं सकती, कर्म बिगाड़ लिए तुमने। तो इसके साथ इसलिए इस तत्व मंत्र का संयोग मालिक ने किया है कि ये फिर बकवाद नहीं करेगा। जैसे एक तो एक जड़ी खाई जावे उसके साथ दूसरी मिला दी जाती है तो वो कुछ अन्य लाभ देती है, तो इस प्रकार परमात्मा ने जन्म मरण के रोग काटने के लिए एक फार्मूला तैयार करके हमें दिया है कि ऐसे ऐसे भक्ति करो। प्रथम मंत्र के अंदर जो तुम ओम और जो मंत्र तत्व भी साथ में उसमें है एक, उसका जो जाप करते हो वो एक सामूहिक पुड़िया बन गई, सभी का मिश्रण बन गया, तो वो कुछ और लाभ करेगा। और यहां दो का योग करके जो स्वास्थ्य सिमरन आपको दिया गया है ये कुछ और लाभ देगा। और फिर इसके साथ सारनाम जोड़ दिया जाएगा, सारनाम फिर अलग से आपको मिलेगा, फिर इनका एक विशेष और गुण मिलेगा, तो इस प्रकार हमें मोक्ष मिलेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमारे सदग्रंथ जो है कौन सा मार्ग बताते हैं, कौन सी साधना बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है और अंतिम सांस तक इसका उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो जाता है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मरण में आते हैं। और ये खुद कहता है अर्जुन तेरी मेरी जन्म मृत्यु बनी रहेगी, ओम नाम गीता ज्ञान दाता का जाप है। ये ब्रह्म बोल रहा है गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जैसे भूत बोलते हैं। फिर ये संकेत करता है कि परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ब्रह्म ने माने उस सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा की भक्ति का केवल ये तीन मंत्र का जाप है, यही निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। ये अंतिम दिशा आपको निर्देश दिशा दी जा रही है कि इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं है। ये कहता है कि उस परमात्मा के जो यथार्थ मंत्र हैं मैं नहीं जानता, तो तू दर्शी संत से पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा होते हैं या परमात्मा का दास होता है, और जो परमात्मा का भेजा हुआ दास होता है उसके विषय में कहा है, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे ऐसे संत को मेरा ही रूप समझ लेना, उसमें भिन्नता मत मानना, क्योंकि परमात्मा ने वही पावर जो आपको पर्याप्त होती है और वही भक्ति सिद्धि साधना उस दास को दी हुई होती है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है हम उस पर आते हैं। पहली बात तो ये है कि हम भक्ति करते तो हैं लेकिन कर रहे हैं मनमाना आचरण, और जो साधना हम कर रहे थे उससे जो सुख हो रहा था हम सोचते थे इन्हीं देवताओं ने हमें दिया है। अब वो भक्त यहां हजारों की संख्या में बैठे हैं जो साधना वही करते थे, पहले उनको सुख हो रहा था और फिर कर टूट गए घर पे, तो उन साधनाओं ने फिर क्यों ना मदद करी आपकी। और परमात्मा की वाणी सुख संवेद कहता है कि दुख में सुमन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करें तो दुख का ही को हो। तो आप तो जन्म जात उन साधनाओं को कर रहे थे, सुखी थे तब भी वो साधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, जैसी तैसी तुम्हें पता था, और उनके करते करते फिर दुख हो गए। उसका यही कारण था कि आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, वो पुण्य संग्रहित थे आपके पास इकट्ठे थे, और वो आप खा रहे थे बरत रहे थे खर्चो खाओ, और जब पुण्य आपके समाप्त हो गए और पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ फिर इन पाप कर्मों ने कैर तोड़ दिया, और जो साधना आप कर रहे थे और मानते थे कि इनसे सुख हो रहा है, अब वो कहां गई वो साधना आपकी। अब दुख में तो दुख परमात्मा ने या दुनिया करे, लेकिन सुख में भी कर रहे थे आप तो, और फिर परमात्मा की वाणी दुख सुख में सुमन करे तो दुख नहीं हो सकता। तो वो साधना नहीं मिली जिसके ऊपर ये वाणी अप्लीकेबल होती है, उस साधना के ना मिलने से वो भक्ति करते हुए दुखी हो रहे हो, तो वो भक्ति ठीक नहीं थी। अब परमात्मा कहते हैं कि भक्ति भी करते हो और शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण आप कर रहे हो तो वो भी आपका व्यर्थ है। फिर आपको सही भक्ति मिल गई, सत साधना भी मिल गई, और आपको विश्वास नहीं भगवान में, आप जो साधना कर रहे हो उस पर विश्वास नहीं है, परमात्मा क्या कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे पुराने ज्ञान से हम इतने कंडम हो गए, अंतःकरण इतना मलिन हो लिया, हम किसी भगत से सुनते हैं जो प्रथम भक्त आते हैं यहां, और वो दूसरे पुराने भक्तों से सुनते हैं कि मुझे ये लाभ हुआ मुझे ये लाभ हुआ, तो उनका विश्वास नहीं होता इन बातों का, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसी घटना घटी नहीं, ऐसी घटना घटे क्योंकि वो भक्ति ठीक नहीं थी। अब कोई ये कहता है कि मैंने कनेक्शन लिया बिजली का और मेरा पंखा अपने आप चल रहा है, और दूसरा पंखा वो भी टांग रहा है और उसको कनेक्शन मिला नहीं, तार सारे फिट कर रखे हैं, कनेक्शन भी किकर का लठ का बांध रहा, कोई उसने दे रखा हो कनेक्शन उसको पावर हाउस से संबंधित ना हो व्यक्ति, तो उसका पंखा नहीं चल रहा, वो कभी हवा में आप घूम लिया वो दूसरी बात है कि कभी कभी चलता तो है पर इतना नहीं चलता जैसे आप कहते हो, और वो कह रहा है कि मेरा डाटा नहीं डटता, ऑफ करूं जब बंद हो है, तो उसका विश्वास नहीं हो रहा किसको, जिसका कनेक्शन पावर से नहीं है, और वो झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि वो उसका प्रयोग कर रहा है उसका आनंद ले रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो आपको परमात्मा कबीर जी की पावर से दास से कनेक्शन मिल गया, नाम मिल गया, उनके घर में वो सुख ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे। और दूसरे जो गुरु भी बना रहे हैं, उन गुरुओं के पास आगे कनेक्शन भगवान से है नहीं, तो वो समझ लो कि करके लठ कर तार बांध गए, आगे तुम्हें कनेक्शन दे बैठा है, वो कति नरा निकम्मा आदमी है, उसका पावर से कनेक्शन नहीं है। परमात्मा से नहीं जुड़ा हो व्यक्ति, जिसको तो आप गुरु मानकर उससे नाम लिए बैठे हो, जब आप पावर से जुड़े हुए किसी तार से जुड़ोगे तो फिर आपके भी पंखे ऐसे ही खखार ठावेंगे, ऐसे ही चलेंगे। फिर बात रही कि हो सकता है आपके पंखे में डिफेक्ट हो, कनेक्शन भी ठीक ले लिया हो आपने, तो फिर अपने पंखे ने संभाला, उसको ठीक कराओ, फिर काम वो तो होंगे ही होंगे। तो आपके अंतःकरण में विश्वास होना अनिवार्य है। तो दास आपको एक कथा सुना होगा, ये दास पहले हनुमान पुजारी था और वो वही साधना करते थे जैसे आम हिंदू भक्त करते हैं, और हम इतना विश्वास अवश्य रखते थे कि हम सुना करते कथा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, उसकी साड़ी बढ़ा दी और दुशासन खींच खींच के थक गया, वो एंड नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुई। तो हम बड़े खुशी होते थे, भगवान में दृढ़ता घनी आती थी। फिर हम सुनते थे कि नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने उसको कैस करके दे दी, यानी नरसिंह जी को 500 रुपये परमात्मा ने स्वयं आकर दिए, नरसिंह जी की बेटी का भात भरा और असरफी और मोरों की वर्षा कर दी चांदी के सिक्कों की। तो हम ये सुना करते हम मानते थे ऐसा बिल्कुल भगवान कर सकता है। फिर हम इन आर्य समाज के सरफिरों से सुनते थे कुछ बातें, इनके आचार्यों से, तो ये क्या कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी हो सकता है, कभी साड़ी चीर बढ़ सकता है। तो हम इतने दृढ़ नहीं थे, हम ये भी मान लेते भी ऐसा भी होगा, ये तो वैसे लोक वेद वैसे बकवाद गढ़ रखी है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम दृढ़ नहीं थे। हमें स्वयं कोई ऐसा परमात्मा ने चमत्कार हमारे लिए कराया नहीं था जिससे हम दृढ़ता से कह सकें ऐसा हो सकता है। तो एक समय की बात है कि दास के मकान पर जब ये दास सर्विस करता था और नाम लिया नहीं था, अपनी वही परंपरागत साधनाएं हम करते थे, तो हमारे कमरे पे किराए पे एक आर्य समाजी प्राइमरी टीचर, प्राइमरी क्लास का यानी पांचवी तक का वो हेडमास्टर था और 50 से ऊपर आयु हो चुकी थी उसकी, और दास उस समय 35-36 साल की उम्र का होगा, 35-34 का। तो एक तो बुजुर्ग होने के नाते, एक टीचर और शिक्षक होने के नाते हमें उसकी बहुत आदर करता था, और वो आदमी ठीक था, नेक विचार थे, बढ़िया बोलन चालन में। तो उससे कभी ये चर्चा होती थी तो मैं पूछा करता था जी क्या आप ये मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी? बोला नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वैसे लोगों ने बकवाद बना रखी है एक महिमा फोकट बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम मान जाते थे क्योंकि वो पहले भी हमने किसी से सुना ही था, फिर एक नेक व्यक्ति शिक्षक आदमी कह रहा है तो सुलझा हुआ लगता, तो वो भी मान ली खाप चल ऐसा भी होगा नहीं होगा, लेकिन भगवान की आस्था फिर भी हृदय में बरकरार थी। फिर क्या दया करी दाता ने कुछ ही दिनों के बाद दास को ये मार्ग मिल गया, ये मार्ग मिला तो दृढ़ता से भक्ति करी, भूख प्यासी थी आत्मा, युगों युगों से प्यासी है इसकी, खूब भक्ति करी, खूब वाणी पढ़ी, सुबह शाम दोपहर की डट का आरती मंत्र सारे कुछ किए। तो एक बार दास ने सोचा कि अपने कमरे के ऊपर अलग से एक पूजा स्थल बनाऊं, एक गैलरी थी, गैलरी के ऊपर कमरा बना दिया, साढ़े 5x15 फुट का, उसके सामने खिड़की, पीछे खिड़की और सामने इधर छत की साइड में गेट और एक बड़ी खिड़की झांकी लगा रखी। तो फिर दास ने एक वो सोचा कि इस पे आमने सामने जैसे मच्छरों से बचने के लिए लोहे की जाली होती है मच्छरदानी जैसे, मैंने सोचा इन पर ये लगा देता हूं आगे पीछे दोनों पे। एक पर लगी लगाई आई थी, वो पुराना लिया था मैं, बड़ा बड़ा जंगला किसी का उतरा हुआ था, जैसे पुराने मकान फोड़ रखा था, वो बढ़िया लकड़ी बताया करते कि वो बढ़िया लकड़ी थी, वो लिया था। आमने सामने वाली के उसके जाली लगी हुई थी, उनका ठीक होना, तो वो जाली लाया मैं, या तो मेरे लिखण में कितना गड़बड़ रहेगी, मैंने उसमें थी 2 फुट 8 इंच चौड़ी थी वह, तो 2 फुट और 1.5 लगा का 8 इंच वो अपने इसमें टेक्निकल भाषा में लिख रखी थी मैंने, 2 जाली इस साइज की मैंने उस लोहे वाले को दे दी कि ये पर्ची है भाई, ये 2 जाली काट के ऐसी सेट कर दे, बांध दे, मैं और सामान लेकर आता हूं। वापस आया, उसके पैसे दिए, जाली उठा लिया। तो मैंने घर आकर के बच्चे से, बड़ा लड़का छोटी सी उम्र का था 12-13 साल का, एक किराएदार था वो 20-25 वर्ष का था, अन्य कोई किराएदार, उन दोनों से कहा, वो अच्छा भगत था, सेवा करता था, कि ये दोनों जाली लगा दो इन दोनों के जंगलों पर। उन्होंने सीढ़ी साड़ी लाकर जुगाड़ जोड़ के और वो जाली लगाने लगे। वो जाली लगाने लगे तो उन्होंने कहा जी ये तो छोटी है, तो मैंने खुद जाकर देखा तो उसको ऐसे सेट करा तो ऐसे तो वो ठीक आ जा, लेकिन चौड़ाई में 8 इंच कम। फिर मैंने ऐसे करके देखा, वो भी गलत नहीं हुई, तो मन में आया कि उसने गलत काट दिया, छोटी दे दी। दूसरी देखी वो भी सेम। फिर इतना हमारा स्वभाव था कि भाई किसी गिल क्यों माथा मारा, पता नहीं वापस करेंगे कि ना करेंगे, इसको रख दो उठाकर। वो दोनों उसकी मां ने उठा करके वो ऊपर स्टोर में डाल दी। 6 महीने बीत गए, उसके कुछ दिन के बाद दास ने ये पुस्तक छपवाई भक्ति बोध, और दास पुस्तक छपवाकर अपने गुरुदेव को दिया करते थे, और गुरुदेव उनको फिर अपने भक्तों में बांटा करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको दीक्षा देते थे। दास को उस समय दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, अपनी भक्ति करता था, जितनी सेवा हो सकती थी उतनी सेवा भी करता था। मेरे पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर पंजाब में रहते थे, उनका पंजाब के अंदर 3 स्थान थे, एक खन्ना में, एक मोगा में, एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में, और चौथा था नजफगढ़ के अंदर अनाज मंडी के पास। वो ज्यादातर तलवंडी भाई रहते थे या मोगा के अंदर रहते थे, और यहां छुड़ानी आते थे केवल वो वर्ष में 2 बार, एक तो गरीबदास जी का बोध दिवस होता था मार्च में, और एक उनका होता था भादवे के अंदर निर्वाण दिवस गरीबदास जी का, तो उन दिनों आते थे। तो उस समय दास ने वो पुस्तक बनवा कर रख ली भक्ति बोध के, और उस पूजा स्थल पर एक तकत रख के उसके ऊपर रख दी कि गुरुजी आएंगे उन्हें दे दूंगा, वो फाल्गुन में आने थे, तो तब तक एक रेनी सीजन वर्षा का मौसम भी जा चुका था। तो मैंने क्या देखा कि जिस खिड़की में वो जाली नहीं लगी थी उसके अंदर से चूहे घुस गए और उनको काटना शुरू कर दिया पुस्तकों को। मैंने इन बच्चों से कहा कि भी जो वो जाली थी दोनों, वो छोटी तो थी, उन दोनों को ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो, दूसरी तो गली में है उधर से चूहे आते नहीं, और ये अंदर की साइड में मकान से इसके अंदर घुस रहे हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर करके इसने कवर कर दो। ऐसा दास कहकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। तो ये बालक था, बड़ा लड़का छोटा ही, उसकी मां कहती रही भी तेरा पापा कह गया है तो इसने लगा दे, लगा दो, दोनों भाई लगा के सीढ़ी साढ़ी, वही किराएदार जिसके सामने वो छोटी सिद्ध हुई थी, तो वो किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था, वो शाम ने 5 बजे के बाद आया और मैं आया 6 बजे, तो मुझे तो लगन थी आते ही कि उन्हें लगा दी होगी, तो ठीक है ना, मैं साथ लग कर लगवाऊंगा, वो तो घना खराब कर देंगे चूहे। मैंने आकर देखा लगा रखी जाली, और एक जाली वहीं पड़ी नीचे जहां वो लगा रहे थे, वहीं पर नीचे, और वो खेलने चले गए। मैंने इनकी मां से पूछा कि ये जाली बदलवा लाए क्या ये बच्चे, तो कह रही थी कहां बदलवाओ थे, आपके जाते कहने लगी थी मैं, इसने भाई इसने लगा दे, यो खेल तराई आपके आने का टाइम हुआ, जब ये न लाई है दोनों ने डरता ने, अब मैंने उतार कर दिया स्टोर से चौकी। तो मैं हैरान हूं, मैंने सोचा भाई ये कैसे हो गए, तो बिल्कुल छोटी थी, 8-8 इंच छोटी थी, और एक जाली पूरी लगकर पूरी कवर करके 8 इंच और ऐसे मुड़ी हुई थी साइड में, ऊपर से नोकी नू साइडों से ऐसे 8 इंच वो बढ़कर 8-7 इंच और ऐसे मुड़ी हुई थी नू। मेरे यह बात गले उतरे नहीं, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा चमत्कार मालिक का होया नहीं था, बेशक थे हम भगत बने हुए थे। मैंने उसकी मां से पूछा तो सच बता ये जाली वही है या ये बदलवा के लाए, कहने लगे यू बदलवान का है, यू कहां बदलवा था, गेर वैसे कहा कि दोनों ने, ये तो वही मैंने उतार कर डाली है, यू बालक है, इसने कहां बदलवान किया सी पता है। मैंने कहा बच्चा कहां है, यू खेल रहा था बाहर, उसको बुलाया। मैंने कहा बेटा मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा कि जाली वही है, अकपिता पापा जाली वही है, भगवान की कसम। अपने आत्मा मारा, हमारे साथ ये घटना कभी घटी नहीं थी, मैंने सुनी सुनी थी आज तक। तो पुण्य आत्मा उस दिन के बाद दास का जीवन बदल गया। सतगुरु जो चावे सो कर ही, चौदह कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत जमत्रास निवार, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो फिर उस किराएदार से पूछा मैंने कि भी सच्ची बताओ कि जी अभी आंटी ने उतार कर दी थी स्टोर से, हम दोनों लगाई है। मैंने उनसे कहा कि भैया छोटी नहीं थी जब तुम लगा रहे थे, तब उसको याद आया कहा ये तो छोटी थी और मेरे सामने ये स्टोर में डाली थी पहले, तो करे ताश्चर्य हो गया। मैं बोला बेटा मुझे मालूम है के हो गया। तो फिर दास को इतना दृढ़ विश्वास हुआ और उसका ये प्रतिफल ये हुआ, यू बाग लाग गया भगवान का। जब तक हम डगमग है विश्वास नहीं होगा तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते, कोई ना कोई हमें डगमग करके हमारी भक्ति और रास्ते का नाश कर देगा। तो फिर जो लगन लगी इस दास के, अब चाहे को सारा देश इन्हों का भगवान नो नहीं कर सकता, दास नहीं मान सकता, भगवान ना नहीं फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो तो नकली आदमी है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि ये कितना अच्छा आदमी है, आर्य समाज का जो व्यक्ति है दानंद के विचारों से प्रभावित है और ये नहीं मानता कि भगवान कुछ ऐसा कर सकता है, तो ये बहुत अच्छा आदमी है, मेरी बात ने जरूर मानेगा, क्योंकि मैं कोई लटोटर करनिया ना, मैं कोई दुनिया को ठगने वाला नहीं ना, कोई जब तक उपदेश देने का भी आदेश था कोई ने सोचा लालच में कर रहा होगा, तो इसको मेरी बात का विश्वास होगा। और कोई मैं अनएजुकेटेड नहीं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थोड़ा बहुत पर डैबी हूं, तो मेरी बात शायद यू जरूर मानेगा। तो मैंने उसको बुलाया अपने बैठक में ड्राइंग रूम में और उनसे फिर चर्चा शुरू की, बच्चे वहीं बुला लिए, इनकी मां बुला ली, और मैंने कहा जी मास्टर जी क्या आप मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी थी, कैसी बात करते हो आप, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि देखो ये सामने जाली लगी है बाहर, आप देख लो बेसक, और ये जाली छोटी थी 8 इंच तो पूरी होगी, 8 इंच और बढ़ रही है, यानी लगभग 16 इंच ये और बढ़ गई हमारी जाली, लोहे की बढ़ गई, आप विश्वास करो हमारे पे। वो एकदम लाल हो गया, कैसी बात करते हो, ये कभी हो नहीं सकता, अब मेरे सामने करके दिखाओ। मैं बड़ा हैरान हुआ, यार आदमी दिखा था बढ़िया, ये तो गोबर है कतिया डंगा, डांगर क्या बोला, कजाब करके दिखा। मैंने कहा जी मैं ये नहीं कहता कि मैंने कराया, भगवान ने किया, कैसे मैं नहीं मानता। तो मैं चुप हो गया और अंदर से दुखी हुआ। तो दुखी आदमी का चेहरा भी बदल जाता है। तो उसने सोचा मकान मालिक है भाई, दुखी हो गया है तो उसने बात घुमाई, कहने लगा कि आप इंजीनियर हैं, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हो। मैं नहीं बोला उससे कुछ भी। कहने लगा देखो मैं बताता हूं महर्षि कैसे होते हैं। महर्षि दानंद इतने पहुंचे हुए महापुरुष थे कि एक समय वो कमरे में बैठकर योग अभ्यास कर रहे थे आसन पदम लगा के, और वो जमीन से उठते थे और छत के सिर लगा के वापस आकर जमीन पर बैठ जाते थे। और उसको देखने वाला एक नौकर था, खाने के लिए बताने गया था, झांकी से देखा, औरों को बुलाया, यानी वो प्रमाणित करना चाहता था कि दे मैं झूठ बोलता हूं, यानी इस प्रकार घना ने देखा। वो जमीन पर से उठता था, छत के सिर लगा के वापस आ जाते थे, ये होते महर्षि। मैं बोला झूठ, कति झूठ, तू करके दिखा। मेरा दाव लग गया। फिर उसका पसीने आगे ने बोला कबीर पंथियों ने आपको गणाशाणा बना दिया, जवाब देने लग गया। मैं जवाब देने नहीं लग गया, मेरे साथ बीत गई, इसलिए आज मैं आपके सामने कहना पड़ा कि आप कल मिसगाइडेड हो। जब भगवान कुछ कर ही नहीं सकता फिर तेरे मेरे जैसा हो गया, फिर पूजा की क्या हो सकता है। वो परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो कहते हैं क्या होते हरि नाम से जो मन में नहीं विश्वास। भक्ति से क्या होगा जब विश्वास नहीं कि परमात्मा कुछ कर सकता है। एक समय एक नगरी के बाहर जंगल में एक तो 40 वर्ष से साधक साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा, बड़ा सुप्रसिद्ध था उस क्षेत्र में, और एक अभी युवा बालक था 30-35 साल का, 4-5 वर्ष से वो साधना कर रहा था दूसरी साइड में जंगल में झोंपड़ी बनाकर। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से और वो उन दोनों से मिलकर डेली जाता था, चर्चा करते थे भगवान की, तो बड़ा अच्छा समय उनका व्यतीत हो रहा था। एक दिन उस देवदूत ने परमात्मा भगवान से कहा कि भगवान आपके बड़े भक्त हैं वहां पर एक नगर में, बहुत ही आपका गुणगान करते हैं, आप पर न्योछावर हैं। तो भगवान ने कहा कि उन दोनों में से एक भक्त है, एक तो नकली आदमी है वो। देवदूत ने सोचा वो बच्चा भी लगा है छोटी उम्र का, वो उसके बारे में भगवान कह रहे होंगे। तो देवदूत ने कहा कि वो ना जो अभी 3-4 वर्ष से भक्ति पर लगा है वो अभी बालक है। तो भगवान बोले नहीं, जो 40 वर्ष से लग रहा है ना वो निकम्मा नकली आदमी है। अब वो देवदूत भगवान के मुख की तरफ देख रहा है तो भगवान भी जान गए कि इस देवदूत का या बात गलत उतरी नहीं। तो भगवान ने कहा कि क्या आपको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात पर। देवदूत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो बड़ा अच्छा भगत दिखाई देता है। तब भगवान ने कहा तो ऐसे करना, किस समय जाता है वहां कि प्रतिदिन मैं 10 बजे जाता हूं, तो आज तू 2 बजे बाद जाना और उनको ऐसा ऐसा कहना, और फिर उनका उत्तर जो वो दे तुझे अपन निर्णय हो जाएगा भगत कौन सा है। तो वो 2 बजे पहुंचा, उन्होंने बहुत इंतजार की कि आज क्या बात है, वो देवदूत नहीं आया। तो पहले गया वो, उसका निर्णय था वो तो भगत पक्का है, 40 साल से भक्ति कर रहा है। उसके पास गया तो उसने कारण पूछा, देवदूत आज लेट क्यों आए, क्या कारण था, स्वस्थ तो हो। देवदूत ने कहा कि क्या बताऊं भगत, आज तो भगवान ने अनहोनी कर दी, ऐसा कमाल कर दिया, और वो 1 बजे करना था इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका, और वो देखकर आया मैं उस कौतुक को। तो उस भगत ने पूछा कि क्या किया भगवान ने, कि परमात्मा ने सुई की नके में कह हाथी निकाल दिया। तो वो कहता 40 वर्ष वाला कि ऐसी झूठ बोल देवदूत किसी का जच जा, ये कभी हो सकता है? है क्यों सट्टे मारे? अब वो देवदूत भगवान की बात याद आती है, अरे सचमुच तो पशु है, जब इसका इतना विश्वास नहीं भगवान क्या नहीं कर दे, फिर क्यों डलेट हो रहा है ये? उठ कर चल पड़ा, फिर चला दूसरे के पास जो कुछ ही समय से भगवान की भक्ति पर लगा था। अब उसके पास जाकर उसने सोचा यू तो पता नहीं के सुना होगा, जब इतने पुराने भक्त ने ये उत्तर दिया इसका। उसने कारण पूछा भक्त ने कि देवदूत इतना देर से आने का क्या कारण था, आपके इंतजार कर रहा था, आप आते हो तो चर्चा होती है भगवान की, आनंद होता है। तो उसने कहा कि क्या बताऊं भक्त, बताऊं तो दचैनी और बिना बताए मेरा पचैनी, बतानी जरूर पड़ेगी। अब बता भाई बता क्या बात है कि एक बजे भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी, बस पूछो मत, कि परम बस कमाल कर दिया। आश्चर्य की बात है कि हाथी को सुई के नाके में के निकाल दिया। तो वो भगत कहता है ये कोई आश्चर्य है, भगवान काट दे सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में गए तो हाथी की बात करे। वो देवदूत ने उस बच्चे को सीने से लगा लिया, धन है तेरे मात पिता जिनसे जन्म हुआ। जब भगवान पे विश्वास नहीं है तो फिर डले क्यों ढो रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो? भगवान जो चाहे सो कर सकता है। क्या बताते हैं सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी श्याम कहूं के श्वेत। अब क्या बताया है कि परमात्मा पूरी पृथ्वी को जल से भर दे हजारों फुट ऊंचा एक पल में, और सब तहस नहस कर दे, और दूसरे पल में एज इट इज न्यो का न्यो बना दे, जो जहां बैठा जो काम कर रहा है जितने बच्चे एज इट इज बना देता है। तो कहते हैं परमात्मा तने भला कहूं या बुरा कहूं, एक भक्त था अपने आत्मा परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनका विधान आपको वेदों से प्रमाणित भी दास ने कर दिया। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा ज्ञान ना समझ कर फिर नाम नूम लेकर फिर अपनी धुन से लगे रहते हैं, तो वो भी हमारी कमजोरी होती है। क्योंकि जैसे एक ग्राउंड है खेलने का, बच्चे जिसमें मैच खेलते हैं और उसकी कुछ मर्यादा बना रखी है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए आपने, उसे बाहर जाते तो हम फाउल ही खेल रहे हैं, चाहे कितने किलोमीटर तक कबड्डी कबड्डी करते अंडे जाओ, वहां लाभ आपको मिलेगा नहीं, वो तो उसी में करना जो कुछ करना आपने, तो मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। फिर भी परमात्मा ने ये भक्ति बनाए रखने के लिए प्रत्येक युग में ये मंत्र दिए प्रथम, और उनकी उन डट के भक्ति करी क्योंकि वो श्रद्धालु और उसी के लिए निकले थे घर से, तो उन्होंने खूब भक्ति की, उनसे सिद्धियां भी साथ इसमें पैरेलल आ जाती हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि शब्द महल में सिद्धि चौबीसा और हंस बिछोड़े विश्वे बीसा, हमारे इस मंत्र के अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी। और यहां के भगत और संत तो एकादी सिद्धि प्राप्त करके हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन जाते हैं, तो ये सिद्धि आपको बर्बाद कर देंगी, इन सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है। एक समय एक सिद्ध पुरुष के 2 शिष्य थे और उसने बता रखा था कि तुम ऐसी साधना करो, ऐसी साधना करने से तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी और जगत में तुम्हारी महिमा हो जाएगी। और जब घर से निकलने के बाद साधु संत जो बन रहे हैं नकली, इन रोटी का रोला गणा रहे कि तुम्हें टूक मिलता रहेगा, वो सिद्ध लास्ट में यही फाइनल कर लेते हैं, उस सिद्ध की मृत्यु होगी। और वो 2 चेले थे तो कई जने, 2 मित्र थे उनमें से, आपस में आश्रम में रहते थे, उनकी मृत्यु के बाद वो जंगलों में चले गए अलग अलग दिशा को, कि वे गुरु जी ने जो साधना बताई है डटकर भक्ति करेंगे और सिद्धियां प्राप्त करेंगे। तो उनमें से एक भगत को परमात्मा कबीर जी का सत्संग सुनने को मिल गया, जो श्रद्धालु था। उस सिद्ध का श्रेष्ठा। और परमात्मा ने फिर बात बताई, भाई ये सिद्धि तो ऐसी है, सारा जीवन तो इन मंत्रों को जाप करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, फिर ये सिद्धि कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाती है। दुनिया में प्रभुता तो ऐसे बन जाती है, लेकिन आपका जीवन नाश हो जाता है। जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में चींटियां होती, पंखों वाली कीड़ी निकलाती है, और वो पहले भी वहां जो आम चींटियों में वो भगवान बड़ी बैठी थी, क्योंकि वो तो पंख वाली थी, आकाश में उड़ जाती थी। आम चींटी तेनो समझती है तो भगवान से मिलकर आती होंगी, जब पता नहीं कहां उड़कर चली जाती है। वर्षा के मौसम में जब वो चींटियां बाहर निकलती हैं, गर्मी महसूस होती है अंदर, तो बाहर वो क्या देखते हैं, दीपक या कोई लैंप बल्ब ट्यूब, उसके चारों तरफ टक्कर मारती रहती हैं, टक्कर मारती रहती हैं, और कुछ देर घंटे के बाद उनकी वो सारी पंख टूट जाती है, और फिर वो जमीन पर गिरकर रेंग रही होती हैं आम कीड़ी की तरह। यानी वो पंख टूटने के बाद वो चींटी की चींटी है, पहले भी चींटी ही थी, उनका भ्रम हो गया था, आकाश में उड़कर पता नहीं के पा लिया। ऐसे ही ये सिद्ध पुरुष है जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं तो आम जनसाधारण से ऐसा लगता है तो वह भगवान से मिलाए होंगे। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खाव न पी, एक सिद्धि जो बहुत दुख दी, एक सिद्धि तनहंस नहीं आ रहा, एक सिद्धि ऐसी होती है शरीर को छोड़कर ये प्राणी निकल जाता है, पता नहीं कहां कहां घूम कर फिर वापस आ जाता है। एक सिद्धि ऐसी होती है जल के ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे थल पर चलते हैं। तो उस भगत का यह बात समझ में आ गई कि यह तो बात बिगड़ गई भाई, बहुत गलत हो गया, मैं तो सिद्धि के लिए अब धक्के खा रहा हूं। तो उस परमात्मा जब आए हुए थे कबीर जी, पता नहीं किस रूप में आ जाते हैं, साधु और फिर भक्तों को दीक्षा देते हैं, उनको चार्ज कर जाते हैं। तो उस भगत का वह बात समझ में आएगी, परमात्मा जब आए थे परमेश्वर, उस बच्चे की लगन देखकर, क्योंकि घर से निकला था, पहले सिद्ध का चेला हुआ, वहां डटकर भक्ति करी, फिर वहां जाकर भगवान की यथार्थ ज्ञान मिला, परमात्मा गुरु रूप में बैठे थे, उस गुरु के प्रति बड़ी लगन श्रद्धा से उसने समर्पित भाव से भक्ति की, तो उस गुरु ने उस सिद्ध के शिष्य को आदेश दे दिया कि बेटा तू दीक्षा दिया करिए, अब कल के बाद मैं नहीं रहूंगा संसार में, तो परमात्मा तब जानोगे। अब वो अपना जैसे भी गुरुजी ने बताया था वो मंत्र देने लगा और वो भक्ति करने लगा। एक दिन कोई समागम था इनका, वहां पर ये सभी साधु संत इकट्ठे हो गए, उधर से वो जो उसका जो साथी था, उस सिद्ध पुरुष का चेला जो सिद्धियों के लिए निकला था और ये भी सिद्धियों के लिए निकला था, ये दोनों इकट्ठे हो गए 12 वर्ष के बाद जब दोनों मिले, कुशल मंगल पूछी, फिर पूछा भी आपने क्या पाया, आपने क्या प्राप्ति हुई। तो जो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो गया था वो कहने लगा भी मैंने तो सब कुछ पा लिया। तो दूसरा चेला जो उसका साथी था सिद्ध का चेला, वो कहने लगा कोई करामात दिखा कि नहीं, साधु करामात नहीं दिखाते। और वो साधु उन्हीं दिन से करामात ना हो, यानी साधु चमत्कार नहीं दिखाते, परमात्मा का विधान है, और वो संत भी नहीं जिससे कोई चमत्कार ना हो। एक तो चमत्कार दिखाना ही होता जा तेरा नू हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, साधु नहीं ऐसा कहेंगे। और वो संत ने जिससे चमत्कार ना हो, आप यहां देख रहे हो कितने चमत्कार होते हैं, दास नहीं कहता कि तेरा नू हो, भगवान करेगा भाई, और सब कुछ हो रहा है, और वो चमत्कार दिखाते हैं बकवाद करके, तो कहने लगा भी नहीं साधु चमत्कार नहीं दिखा करते। तो कहने लगा तेने क्या किया भाई, 12 वर्ष में कोई बात है, मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। तो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हुआ था, उसने पूछा भाई के पाया आपने, बताइए क्या दिखाऊं। हक देखा जिस दरिया के किनारे वो बैठे थे, उस दरिया के ऊपर वो ऐसे चला गया जैसे थल पर जाते हैं, और जाके वापस आ गया। कहने लगा देखा देखा मैंने क्या कमाई कर ली, बोला खा कमाई कर ली 12 वर्ष में, दो अन्य कमाई करी इतने, एक अन्य किश्ती वाला परली साइड में छोड़ दिया, एक अन्य उल्टा लिया हुआ है, 12 साल में दो अन्य की कमाई करी, जीवन नाश कर लिया। बोले अब एकदम वो सहम गया कि यह बात भी सच्ची है, कश्ती में बैठ के भी जा सके आदमी, क्या इससे तो कला टूट गया। तो बैठ गया उसके पास, फिर भाई बात क्या है और क्या करना चाहिए। कहने लगा भाई ऐसे ऐसे सौरा गान सुनाया, वो रोने लग गया। कहने लगा भाई मैंने तो जीवन नाश कर दिया, और वो कौन है वो संत जिसने आपको ऐसा जान ऐसा ज्ञान दिया, वह मुझे भी बता, मैं भी उसका शिष्य बनूंगा। फिर वो भगत रोने लग गया, परमात्मा का जो शिष्य बना था। तो सिद्ध के शिष्य ने पूछा आप क्यों रोए? कि मैं इसलिए रोया कि जो आपको जिससे नाम दिलाना था वो संत नहीं रहे, चले गए अचानक। तो वो इतना तो उनको ज्ञान होता है कि संत जाने से पहले कोई ना कोई व्यवस्था करके जाते हैं, उन्होंने किसी को आदेश दिया होगा दीक्षा देने का, मैं उससे ले लूंगा। कि जिसको उन्होंने आदेश दिया उसे तू दीक्षा नहीं ले, क्योंकि कारण क्या था कि जो सिद्ध के वो शिष्य थे दोनों, इनमें जूनियरिटी सीनियरिटी बहुत दिन तो चल रही है। वो पहले शिष्य बना था जो 12 वर्ष डलेड हो गए, सिद्धि सीखी थी, और जो परमात्मा का भक्त बना वो बाद में उस सिद्ध का शिष्य बना था, वो सीनियर था उससे, और वो भगत जो परमात्मा का बना वो जूनियर था। तो ये जूनियर सीनियर की बीमारी और आग लाग रही सब जगह। तो कहने लगा भाई जिसको वो आदेश दे गए ना आप उससे दीक्षा नहीं दे सकते। तो सिद्ध के चेले ने कहा भाई ऐसी कौन सी बात है, क्यों ना लूंगा, मैं नाम लूंगा, अपना कल्याण करवाना मैंने। तो उसने बताया कि भाई इस दास को आदेश करके गए हैं वो नाम देने का, और तू मेरे से सीनियर है, इव तेरी नाड़ मुड़े को नहीं, और नाड़ मुड़े बिना यू काम चले नहीं, तेरी गर्दन नहीं मुड़े। ने बोला यह कैसे कह दिया आपने, अरे इससे बढ़िया और क्या बात होगी, दोनों मित्र तो आप मेरे गुरु, में आपका चेला, आज से आपका दास आपका चेला है, और चरणों में माथा टेक दिया, कल्याण नाम दे मुझे। तो पुणात्मा कहते वक्त पर है सौदा करे, और बाढ़ में जाओ वो नकली ज्ञान है। तो ये साधु संतों के लक्षण होते हैं, और ऐसे ये भक्ति मार्ग अपना प्रफुल्लित होगा। इस प्रकार हमने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है। अपनात्मा हमने अभी तक लोक वेद सुने हुए थे और परमात्मा की महिमा से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम भक्ति न कर सके। जब तक हमें सारा ज्ञान होगा इन ऑल रिस्पेक्ट, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। धर्मदास जी को परमात्मा मिले थे, और फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद वो उनके प्रति कितने समर्पित हुए थे। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। जब सर्पन डसी जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। सर्पन डसी जब जा, इंद्रमती रही उकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय, बैरूली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहागरोली मंत्र सुनाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होवे थे अकाज अर्ज करी डूब तो देख जहाज। दामोदर सेठ के होवे थे अकाज अर्ज करी डूब तो देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंगाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास सत पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब पहले ये भक्त धर्मदास जी जो थे ये श्री राम के कट्टर पुजारी थे और श्री विष्णु जी श्री कृष्ण जी। जैसे हम आम हिंदू दशा में ज्ञान था हम सभी ऐसे ही पूजाएं करते थे। और जब परमात्मा के ज्ञान से वो परिचित हुए तब वो कह रहे हैं कि परमात्मा हम तो वर्मित थे। अब पता चला सच्चाई क्या थी। अब जैसे पुणात्मा हम सुना करते थे कि समुद्र के ऊपर पुल श्री रामचंद्र जी ने बनवाया, ठीक है। फिर हम सुनते थे कि नल नील के हाथों में एक ऐसी करामात थी कि जो पत्थर उठाकर रख देते थे वो पानी में डूबा नहीं करते। तीसरा हम कारण सुनते थे कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया था इसलिए पत्थर तिरे थे। ये था लोकवेद दंत कथा उवाबाई जिसका कोई सिर पैर नहीं था। वास्तविकता ये थी कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। कबीर परमेश्वर जी सतयुग में सत सुकृत कह टेरा त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया और कलियुग नाम कबीर धराया। तो दूसरे युग त्रेता युग में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे, मुनिंदर ऋषि। और वो ऐसे शिक्षा दिया करते थे, ज्ञान सुनाते थे। कुछ श्रद्धालु उनकी दीक्षा लेकर जो दुखी आते थे परमात्मा के दरबार में। देखो वैसे तो हम विज्ञानी काल ने पकाए रखे हैं, घने विद्वान बना रखे हैं। किसी से आगे कोई चर्चा करके देख लो आपको 20 वाणी सुना देगा कबीर साहब की और गीता के श्लोक सुना देगा, वेदों के मंत्र निरे सुना देगा। अर कख पता नहीं इनको। तो इसी प्रकार परमात्मा से बहस विवाद करने वाले बहुत घने होया करते थे त्रेता। लेकिन जो दुखी होते थे वो सब जगह थक लेते थे, परमात्मा के पास जाते थे। और वो तो परमात्मा दयालु हैं, उनके बच्चे हैं सभी, उनके पास आएंगे तो माँ बाप पर देखा जा बालक दुखी तो सुख भी देगा जब नीत साबित होगी। तो जाते ठीक होते, बिस्तरों को और बताते भाई वहां जाते ऐसा दुख हुआ था मैं ठीक हो गया। और नल और नील नाम के ये दोनों मौसी के बेटे थे, आपस में अलग अलग माताएं थी, वो आपस में बहने थी। तो ये दोनों कुछ प्राकृतिक प्रकोप इनके संस्कार का था। ये सब ऋषि महर्षियों के पास जा चुके थे, कुछ मेंटली डिस्टर्ब थे और सारा दिन भारी भारी शरीर रहता था, ऐसे शरीर दिमाग भी घना काम नहीं करे था, यानी ज्यादा डिस्टर्ब थे। तो सब ऋषि महर्षियों के पास गए, सभी ने लास्ट में ये फाइनल कर दिया कि तुम्हारे प्रारब्ध का दंड है, कर्म है, भोगना पड़ेगा, तेरी किस्मत में लिख रखे। अब प्रारब्ध के संस्कार को कोई बदल नहीं सकता, तो भोगना ही पड़ता है। ऐसा विधान ये काल के दूत, ये नकली संत ऋषि बताया करते थे। तो नल नील ने यह फाइनल मान लिया था कि ईब तो यू दुख तुम्हारी मौत के साथ ही समाप्त होगा। फिर भी कोई कहीं कह देता है उसको जाकर के कि वह महापुरुष आए और वो बड़ा सुख देते हैं, सभी को राहत मिल रही है। तो नल नील भी चले गए, चल देख लेते हैं। टूटे से मन से जाता आदमी, जब 9 नकली दुकानों पर ठगा जा चुका होता है और कोई 10वीं ओरिजिनल दुकान भी उसको मिल जाती है, तो वहां भी उसका दृष्टिकोण यही रहता है कि यू भी इस साइड ठग निकलेगा लास्ट में। तो जिस कारण से यह काल ये ऐसा दुखी कर देता है कि ठीक ठिकाने जा जब पहुंचता है, पहले वो ठग चुका होता है, तो वहां उसका विश्वास नहीं बढ़ पाता। और जब तक विश्वास आपका नहीं होगा, इतना मालिक साथ नहीं देता। तो फिर उस परमात्मा में को रजा करते हैं दाता कि अपना विश्वास भी वो आप पे करवाते हैं। अब नल नील चले गए टूटे से मन पे, उस किसी भक्तों के कहने से जो पहले दुखी थे ठीक हुए। अब जो ही वहां जाकर बैठे और सभी भक्त चरण छूकर अपने अपना स्थान ग्रहण करना चाह रहे थे, तो नल नील ने भी जाकर दोनों ने ऐसे ही चरण छुए। दोनों के सिर पे हाथ रखा भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने, मुनिंदर जी ने। अब दोनों ऐसा हल्का महसूस कर रहे थे जैसे टनों वजन शरीर से हट गया और एकदम ठीक हो गए। तो उन्होंने वही चरण पकड़ लिए और खड़े होकर महिमा गान लागे, हे परमात्मा आप तो सचमुच मालिक आए हो। हम इतने दुखी थे, हमने सब जगह घूम लिया था, कभी आराम नहीं हुआ, और आपके आते ही हम स्वस्थ हो गए दाता। हे परमात्मा दया करो। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करनी चाहिए, ये तो एक अस्थाई राहत दी है, अब भक्ति करोगे जब परमानेंट लाभ तो उस तो मिल जाएगा। बोला जी नाम दे दो, पहले सत्संग सुन ले फिर नाम दूंगा। अब पहले तो वो विष्णु जी ब्रह्मा शिव जी के ऊपर आसक्त थे, जब मालिक ने वह सारी हिस्ट्री सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई। अब दुखी आदमी जब सुखी हो गया, जब तक आदमी सुखी है ना तो उसके अंदर तभी तक ये बकवाद चलती है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। हर जब खुद बीत गई ऐसी, फिर तन्ने होगा जी सारी सच्ची, सारी सच्ची जो कह सब सत्य है। तो भगवान यही चाहता है कि बेशक दुखी हो, इस ज्ञान ने सुने और नाम ले, वो सुखी होंगे, सुखी होंगे फिर बार बार आवेंगे। दुख दूर होगा तो उनको विश्वास होगा, फिर बार बार आवेंगे तो वो ज्ञान भी सुनेंगे, और ज्ञान सुनेंगे तो आप पे बात बन जाएगी। तो नल नील ने फाइनल हो गया कि सचमुच उन रामकृष्ण के पुजारियां तदाम धक्के खाकर आ चुके थे, उनसे कोई लाभ बना मिला मैं, हरियाते ही सुख हो गया। तो सचमुच ये संत परम शक्ति के से जुड़े हैं, ये कोई और परमात्मा के पुजारी हैं। वो थे तो खुद मालिक ही, फिर भी हमारी बुद्धि जहां काम कर रही थी उतना ही पर्याप्त था। दोनों ने दीक्षा ले ली और सब जगह बतावे, आपस में बैठे बैठे गुण गावे। तो सत्संग में एक बात और ज्ञान दिया जाता है कि बेटा यहां अधिकतर बूढ़े बुजुर्ग बीमार आते ऐसा ही आते हैं, कोई लंगड़ा है, कोई कैसा है। तो अपने भाई बहनों की, तुम ये भक्त हैं, ये भगवान के लिए आए हैं और इनकी सेवा करनी चाहिए, इनके बर्तन धोते कपड़े साफ करे जिसे बन सके तुमसे, तो इसका बड़ा पुण्य होगा। तो इस भाव से, क्योंकि जो दुखी आदमी है उन्हें सोचा है भगवान घनी कमाई कर लूं, जितनी हो उतनी थोड़ी, तो वो दोनों जने ने यह पक्की कर ली कि अभी इतने भी यहां आते सत्संग के अंदर भक्त जो ऐसे आए हैं उनके कपड़े उनके बर्तन हम धोया करेंगे। तो उन्होंने पहले ऐसे 20-30-50 भक्त आया करते थे और वहां 2-2-3-3-4-4 दिन का सत्संग होता था, तो वही रहते थे। तो वो क्या करते थे, उनके कपड़े उठा ले जाते, पहले हम धोएंगे, उनके बर्तन भी उठा ले जाते, पहले ऐसे बर्तन हारते काशी कुशी के। तो वहां वो क्या करते हैं, पहले साबुन सुबुन तो था नहीं, पहले कपड़ों को भिगोया जाता था कुछ समय जल में, फिर बाद में उनका बोगरे मागरे मार के उनका मैल छुड़ाया जाता था, अटक पटक मुक्के माके मार के। तो वो पहले दरिया में वो कपड़े उनके भिगो देते थे और स्वयं बैठ के वृक्ष के नीचे भगवान से सुनी उस सत्संग में जो भी ज्ञान सुना था उस पर चर्चा करते थे दोनों जने, घंटों बीत जाने के बाद उनको ध्यान आता था अरे कपड़े भी धोने हैं। फिर वो जैसे कपड़े धो धा के उठा लेते थे तो उसमें कुछ कपड़े उसमें दरिया में बह जाते थे। तो कारण क्या बना कि जो भक्त श्रद्धालु इतनी दूर से पहुंचे हैं उनके कपड़े मिले नहीं, तो वो कहते थे भाई हमारा कपड़ा ऐसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, किसी का बर्तन नहीं मिला। तो कहने हमें तो पता नहीं, हम तो सारे जितने ले गए थे उतने ले आए हैं। तो दूसरे भक्त और भी जाते थे सेवा करने, वो बताते हैं कि ये पता नहीं क्या बैठे बैठे बतलाते रहते एक वृक्ष के नीचे, इनको ध्यान नहीं रहता, ये बह जाते हैं पानी में। तो उन भक्तों ने जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा भाई इससे अच्छा तो आप हमारे ये दुहा ना करो, हमारे तो और नुकसान कर दिया। तो ये बात कहते कहते गुरुजी के पास पहुंच गई। अब उन्हें नलनी ने सोचा कि अब तुम्हारी सेवा छूटेगी और तुम मर गए, फिर वो एक कर टूटेंगे, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा बुला के भाई बेटा क्या बात है, कपड़े ध्यान से धो के लाया करो। अखान जी घने ध्यान तो धोते हैं, तो अच्छा भाई ठीक से धो के लाया करो। दो तीन दिन के बाद फिर वही शिकायत आई। तब फिर परमात्मा ने कहा कि बेटा आपको बार बार कहा है ध्यान रखा करो, ठीक आप सेवा ना करो, इनसे दुखी हो गए तो आप सेवा ना करो, इससे चरणों में गिर गए, हे महाराज मर जावांगे, हमारा तो विनाश हो जाएगा, मुश्किल से आपकी दया हुई है, हमारी सेवा ना छुटवाओ। उन्हें सोचे गुरुजी नाराज हो गए। अब उनकी दीन हालत देखकर हृदय की पुकार देखकर परमात्मा ने तरस आ गया कि आत्मा घड़ी दुखी हो जाएंगी जब सेवा छुटवा दी। तो कहा बेटा चल ठीक है आप करो सेवा, आप दोनों को मैंने वरदान दे दिया आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु पानी में डूबे नहींगी। वो बड़े खुश हुए, उन्हें जाकर के जैसे मिट्टी के भी पत्थर होते थे उसमें एक आधा काशी का होता था, तो उन्होंने जो का तो पानी में भरकर काशी का बेला और जलपत रख दिया, वो नो का नु रखा रहा, नीचे लहरें चल रही है और वो यू का नु धरा, और भी तमाशा देख रहे भगत है सचमुच गुरु जी का इसका आशीर्वाद हो गया इनको। तो पत्थर उठा कर रख दिए, पत्थर भी नौका नो वही स्थिर हो जाता था, और कपड़े जहां रख दिए वो हाथ ला कर हिला देते, हिला देना पत्थर, नौके नो कपड़े रखे रहते थे। तो ये उनके अंदर उस परमात्मा ने इसलिए गुण दे दिया कि ये मानना नहीं और इनके कपड़े खराब होते हैं, ये भी दुखी और ये भी दुखी, तो दोनों को सुख दे दिया। वो समर्थ भगवान है जो चाहे सो कर दे। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, अब सत्संग समाप्त हो जाते थे, साल छह महीने में कभी सत्संग होते थे, तो उधर से वो भक्तों को पता चला नल नील को कि ऐसे ऐसे एक रावण राजा है, उसने माता सीता को उठा लिया है, उसको छुड़ाने के लिए सभी साधु भक्त और इकट्ठे हो रहे हैं, चलो रावण को कूटेंगे पीटेंगे। दो भगत भी साथ चले गए वहां पर। अब वहां पहुंच गए समुद्र के उरली साइड में और पुल बनाने की समस्या आ गई, तो समुद्र के अंदर घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी ने तीन दिन प्रार्थना की थी कि हे जल्दी हे समुद्र राज मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत दुखी हूं, ये मेरे साथ बीत गया है, आप भी भक्त हो आपने मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन जल का देवता होता है वरुण, और वरुण के अंतर्गत फिर अन्य आज्ञा और छोटे देवता होते हैं, ये इस प्रकार इन्होंने सभी जल स्रोतों को उनके अधीन कर रखे है। जब तीन दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर याचना करने से भी समुद्र नहीं माना, नहीं रास्ता दिया, तो उसी समय श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण मेरा वो अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको फूकूंगा। और जो ही वो अग्नि बाण छोड़ना चाहा उसमें से लपटे निकलने लगी, उसी समय ब्राह्मण रूप बनाकर और समुद्र बाहर आ गया और कहा महाराज इसको फूक दोगे मुझे तो इसमें फिर भी आप पार नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो खड्डा बन जाएगा, बहुत भारी झील हो जाएगी और कितने जीव मरेंगे, आपको पाप लगेगा। तो श्री राम ने कहा कि फिर मैं क्या करूं, मैं भी तो बहुत दुखी हूं, मुझे कोई विकल्प बता। तो उसने कहा कि ऐसा काम करो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे, कि वो कौन सा तरीका। कि समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल नील नाम के दो एक भक्त है, उनके गुरुजी का दिया उनको आशीर्वाद है कि वो जल के ऊपर से पत्थर भी धर दें, वो डूबता नहीं। तो आशा की एक किरण दिखाई दी श्री रामचंद्र जी ने, नल नील को आवाज लगाएगी वो सामने आए। अब यहां हम मार खाते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना, ठेस लगे तो अक्सीन हो तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब वहां नल्ली नर देखा कि यहां तो अंगद भी फेल हो गया, हनुमान जैसे बलवान भी फेल है तुम्हारे सामने, आज तुम्हारी महिमा होगी। या मार खाता प्राणी यहां पर, तो उस दिन वो भगवान नहीं भूल गए और गुरु जी को भी भूल गए। अपनी महिमा दिखाने के लिए सामने आ गए, सीना ताड़ के खड़े हो गए रामचंद्र के पास, और उनसे पूछा गया कि क्या भाई आपके अंदर कोई ऐसी पावर है, आपके हाथों में कोई शक्ति है? कहा जी कि भाई एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ तभी विश्वास होगा। तो उन्होंने पत्थर उठाया रख दिया, डूब गया, दूसरा उठाया फिर डूब गया। उनको तो विश्वास था कि डूबता ही नहीं था, तब वो एकदम सहम गए, भाई आज क्या बनी, दोनों के हाथ से पत्थर नहीं तर रहे। तब उस ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र की तरफ श्री रामचंद्र जी ने ऐसे देखा, ये कहना चाहा हो कि समुद्र तू झूठ बोल रहा है। तब समुद्र ने कहा कि नलनील तुमने बड़ी भारी गलती कर दी, आज तुमने अपने गुरु को याद नहीं किया जिस कारण से तुम फेल हो गए। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। अपने आत्माओं आपको पहले भी बताते रहे हम कि जिस समय परमात्मा प्रथम सतयुग में यहां आए थे, इस काल ने वरदान लिए थे भगवान से, उन वरों में से एक ये भी वर था कि मेरा पुत्र जाएगा और ऐसी घटना उसके प्रारब्ध में लिखी है वह घटेगी। लेकिन वो इतना सक्षम नहीं है कि समुद्र पर पुल बना सके, भगवान आप उनकी दया करियो वो पुल बनवाइयो। परमात्मा को वो वायदा भी याद था, और उधर से नल नील की फड़क भी निकालनी थी ना भक्ति नाश हो जाता उनका। उनको ये बताना था कि जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। अब उसमें अभिमान आ गया उनके अंदर, उन्हें अपना भट्ठा बैठा लिया। तो इसी प्रकार हम छोटी सी कोई सिद्धि या शक्ति प्राप्त करके अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए और भगत बनकर दास बनकर ही रहना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा भगवान की कृपा मान, अपने सर पर नहीं ले, नहीं तो बहुत हानि हो जाएगी। तो जब परमात्मा वहां पहुंचे ऋषि रूप में, श्री राम ने भी चरण दिए, समुद्र ने भी चरण दिए, और भी सेना वहीं से अपना प्रणाम किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान ऐसे ऐसे मेरे ऊपर आपत्ति आई है, और आज आपके चेलों में वो शक्ति नहीं रही जो आपने वरदान दिया। तो परमात्मा ने कहा कि इनमें वो शक्ति अब रहेगी भी नहीं, समाप्त होगी आज से। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इनमें प्रभुता आएगी, मान बढ़ाई घर करेगी, और जहां मान बढ़ाई और अहंकार है वहां मैं नहीं रह सकता, भगवान नहीं रहेगा। फिर श्री राम ने कहा कि परमात्मा हे महर्षि जी, हमारे ऊपर एक ऐसी आपत्ति आई है, इसका समाधान करो। आप जब अपने बच्चों को अपने शिष्यों को ये शक्ति दे सकते हो तो मेरा भी कुछ ये संकट निवारण करो। तब परमात्मा ने एक सोटी उठाई डंडी और कहा जो मेरे पीछे पीछे। उन्होंने एक पहाड़ था उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी चारों तरफ और कहा कि इसके बीच के पत्थर उठा लो, अपने आप तैर जाएंगे। वो पत्थर उठा के लाए क्योंकि डरे थे। हनुमान जी बोला बट जब राम का नाम लिखती हूं इस पर, अब अपनी अपनी क्रिया सारे कर रहे थे, राम का नाम पहला ना लिखा, इतने लिख के पहले थक लिए थे। वो राम का नाम लिख दिया वद्रदी, वो तेरी तो इसलिए थी। अब कहते हैं रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, जा सत रेखा खेची अपार सिंधु पे, सिलाते रहने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। अब देखो ये था उवा बाई का ज्ञान, श्री राम ने पुल बना दिया और पार कर गया, पत्थर तिरा दिए। फिर कहते हैं नल नील के हाथों बड़ी पावर थी, उसे तिर गए। फिर कहते थे राम नाम लिख दिया हनुमान ने, उसते पत्थर तिर गए। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा, एक दूसरे पर आश्रय दे रहे हैं जगत के ऊपर। कहते जो करने वाला तो उसका कितना जिक्र नाम और निशान भी नहीं, जिस कारण से आप अभी तक भगवान की महिमा से दूर रहे और उसके लाभ से भी वंचित रहे। अब आपको वो तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति और मंत्र समाधान मिला है, वो इस दास के पास है। और अपना कल्याण कराओ, दास पलकें बिछाई बैठा आपके लिए, आप भगवान के बच्चे हो, पार हो जाएंगे।